ओम शांति। ट्रांसपोर्ट विंग के कॉन्फ्रेंस के आज के दिन के इस दूसरे सत्र में हम फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच इस संस्था के वरिष्ठ राजयोगी भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम सभी तहे दिल से एक बार करतल ध्वनि से भाई जी का स्वागत करेंगे। आप माउंट आबू में स्थित जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं, साथ ही साथ में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नित्य नए संशोधन द्वारा आपका विशेष योगदान रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आपको देश एवं विदेश में अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित के द्वारा आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। श्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक रिहैबिलिटेशन का अवार्ड भी आपको मिला है। साथ ही साथ डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम जी एवं भारत के भूतपूर्व प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा एक्सलेंस इन कार्डियोलॉजी का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपको यूनाइटेड नेशन एवं IAEWP ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन मेडिसिन फॉर 21st सेंचुरी से नवाजा है। इसके अतिरिक्त आपको अनेक 16 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं और ISC दिल्ली की ओर से मेडिकल एक्सलेंस और गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। कैट के प्रोग्राम्स के द्वारा मेडिटेशन और हेल्दी डाइट के द्वारा कैसे हम हार्ट ब्लॉकेजेस को फ्री कर सकते हैं, ऐसे आप 3 डायमेंशनल हार्ट केयर, हेल्थ केयर, हैप्पी हार्ट लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हार्ट पेशेंट्स को 100% सक्सेस मिला है। आप एक कुशल वक्ता भी है, जिन्होंने देश विदेश में अनेक सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस किए हैं। हमें बेहद खुशी है कि ऐसी विशेष विभूति हमारे समक्ष है और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आर्ट ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग इस टॉपिक पर भाई जी से सुनेंगे। तो एक बार फिर हम करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और हम विशेष विभूति के द्वारा आज हम ये हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छे टिप्स सुनेंगे। ओम शांति।
आप सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठे, मन को एकाग्र करें, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, साइलेंस में ले जाएं।
आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। आत्मा सुन लो मेरी आवाज,
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज,
सुख शांति और पावनता से भोले भर लो आज।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन तो यही ज्ञान का दार।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
ओम शांति। आप सभी का हमारी दादी जी की तरफ से, ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से, आप सभी ट्रांसपोर्ट विंग में आए हुए भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप में से जो बीमार होना चाहते हैं हाथ उठाओ, जो बीमार होना चाहते हैं। आई थिंक हर एक आदमी दो चीजें जरूर चाहता है, हर व्यक्ति दो चीजें अवश्य चाहता है। एक तो वो चाहता है कि उसका जीवन निरोगी जीवन हो, वो कभी बीमार ना हो, ठीक बात है। दूसरा, वो सदा खुश रहे, isn't it? दो बातें हर एक चाहता है अंदर से ना। तो आज हम आपसे यही बात करेंगे, क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या हम सदा खुश रह सकते हैं? अगर वो पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है ना? कैसे हम अपने आप को सदा के लिए स्वस्थ बना लें और सदा के लिए खुश हो जाएं, खुशी बनी रहे, कभी खुशी हमारी कम ना हो, वो कैसे पॉसिबल है? राइट, आप सुनना चाहेंगे इस पर? सुन के करना भी चाहेंगे, खाली सुनना चाहेंगे, करना भी चाहेंगे? क्योंकि इसी प्रोग्राम के द्वारा जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं वर्ल्ड ओवर से, भारत के विभिन्न हिस्सों से और विदेशों से भी आते हैं, वो कैसे अपने आप को, जिनकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉकेजेस होती हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ना जाने क्या क्या बीमारियां, अस्थमा, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पैरों का दर्द, सिद्ध माइग्रेन, जो भी तकलीफें होती हैं उनकी सब ठीक हो जाती हैं, कैसे? अपनी जीवन शैली परिवर्तन करने के द्वारा, है ना। तो आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं, आर्ट ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग, क्या आप सदा स्वस्थ और सदा खुश रहने की जीवन की कला, जीवन जीने की कला वो क्या है, वो आप सीख सकें। ये हमारा, आप जानते हैं आज की दुनिया में जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशनल का अर्थ है कि जो आज की जो हेल्थ केयर है वो सिर्फ बॉडी का इलाज करती है। जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी दवाइयां बनी हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते, किस पर होते हैं? शरीर पर होते हैं ना। और जबकि आज हम जानते हैं कि 95% से अधिक बीमारियां मन से पैदा होती हैं, वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मीन्स साइकी, मीन्स माइंड, साइकी माना मन, और फिर सोमा मीन्स बॉडी, अर्थात पहले मन में आती हैं फिर हमारे शरीर में आती हैं। तो ये भी जो बीमारियां आती हैं हमारे मन से पहले आती हैं, चाहे इवन जुकाम भी बार बार आता है उसका कारण भी मन है, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है। चेस्ट में इंफेक्शन होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आप मोटे हो गए, मोटा होने के कारण भी टेंशन है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होने का भी कारण टेंशन और गलत खान पान है ना। आपके घुटने खराब होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, माइग्रेन होता है, अस्थमा होता है, इसका कारण भी मन है। तो इन सब का जो कारण, जो जड़ है, उसका इलाज आज दुनिया में अवेलेबल नहीं है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में या विदेशों में, चाहे हम MBBS करते हैं, MD करते हैं, DM करते हैं, MCH करते हैं, या विदेश में जाके FRCP करते हैं, FRCS करते हैं, कोई भी फेलोशिप्स करते हैं, कहीं भी मन के बारे में या आत्मा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ बॉडी का इलाज करते हैं, है ना। बॉडी के बारे में नॉलेज दी जाती है, दवाइयां भी बॉडी के लिए, ऑपरेशन भी बॉडी के लिए, फिजियोथेरेपी भी बॉडी के लिए, जबकि मन के बारे कोई इलाज नहीं हो पाता है, मन के कारण का इलाज नहीं होता। WHO एक विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, पूरी हो गई, उसके बाद सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, UNO बनाया, और UNO के अंडर ही एक एक हेल्थ की संस्था बनाई गई जिसको कहते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सभी देशों के जो मेंबर्स थे सभी देश उसके मेंबर्स बने और सभी ने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव उसमें रखा WHO के अंदर। और ये WHO क्या करती है, सारे विश्व के लिए हेल्थ की प्लानिंग करती है। और जो कमजोर देश हैं, गरीब देश हैं, जहां कई तरह की बीमारियां हैं, उनको वहां मदद करती है ताकि वो लोग भी हेल्दी बन सके। आपकी जो प्रेजेंटेशन इधर देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें जो मैं बोल रहा हूं आपको, आप इधर भी देख सकेंगे। तो WHO ने 1948 में जो पहली स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी, वो परिभाषा क्या थी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। जैसे एक टेबल है ना, उसके चार पिलर्स होते हैं, ऐसे ही हेल्थ के भी चार पिलर्स हैं। एक फिजिकल है, फिजिकल माना शरीर, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आपका शरीर भी स्वस्थ है, आपका मन भी स्वस्थ है, मेंटल माना मन, और सोशल आप सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ हैं। सामाजिक तौर पे माना आप जहां जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, खाली अपने नहीं सोचते हैं, उनके लिए भी ध्यान रखते हैं, उनकी वो भी उनका हेल्थ खराब ना हो, उनका स्वास्थ्य भी ठीक बने, वो खुश रहें, इसका भी आपको ध्यान रहता है। और तीसरा है, चौथा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अर्थात अपने जीवन का शुरुआत और जीवन का अंत क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, आप कौन है, यहां किस लिए आए हैं और क्या करके जाना है दुनिया में, उसका भी आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल वेलबींग, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो चारों स्वास्थ्य जब आपके पास हैं तो उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ। और खाली नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, अगर खाली आपको अभी बीमारी नहीं है या कोई और तकलीफ नहीं है तो आप कहें मैं स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं आप कह सकते। क्योंकि जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं, 2-3 साल की उम्र से ब्लॉक होना शुरू कर देती हैं, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, मोटापे के जीन्स जन्म से होते हैं, माता पिता से मिलते हैं, वो जीन्स कब बन जाएंगे, कब पैदा हो जाएंगे, कब बड़े, कब वो हो जाएंगे पता नहीं है। किस दिन आपको हार्ट अटैक आएगा, किस दिन आपको कौन सी बीमारी आने वाली है, कब मच्छर काटता, कितने दिन के बाद बुखार आएगा पता नहीं है आपको, है ना। कब कोई गलत चीज आप खाते हैं, लंच में आपने गलत चीज खाई, हो सकता है शाम होते थे आपको डायरिया शुरू हो जाए, है ना, उसमें अगर इन्फेक्शन है तो। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता अथॉरिटी के साथ कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि हर डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसी का दो कुछ घंटे और किसी का कुछ साल, किसी का 20 साल 40 साल भी होता है। तो बीमारी आपके अंदर पल रही है, जैसे आपने देख सुना होगा कैंसर की बीमारी होती है, कैंसर कितने समय से अंदर अंदर चल रहा होता है, जब कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो आपको पता लगता कैंसर है जिसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, है ना, सुना आपने ऐसे केसेस सुने। तो इसलिए मतलब कोई बीमारी अभी नहीं है, किस समय आएगी आपको पता नहीं है। किसी को हार्ट अटैक आता है, कह के आता है क्या, SMS आता है आपके पास पहले कि मैं फलां टाइम पे इतने बजे आपके पास पहुंचने वाला हूं, आता है, ईमेल आता है कभी, इसका कभी नहीं आता ना। इसी WHO ने एक प्लान बनाया था 1977 में, जो सोवियत यूनियन था पहले, उसमें कजाकिस्तान नाम की प्लेस था, कजाकिस्तान नाम अभी भी है, कजाकिस्तान नाम कंट्री है, उसकी एक सिटी है, उसका नाम अल्माटा है। अल्माटा में उसमें 1977 में सभी देशों के हेल्थ प्लानर्स इकट्ठे हुए थे, उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम लगभग 2000 तक, 2000 पूरा हो गया ना अभी, तो 2000 तक सबको स्वस्थ बनाएंगे, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। 2000 पूरा हो गया कि नहीं हुआ, अभी सभी स्वस्थ हो गए, बीमारियां घटी हैं कि बढ़ी हैं, बढ़ी हैं घटी हैं। देखिए ये जो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हेल्दी लिविंग, फिजिकल हेल्थ, आज बॉडी की हेल्थ क्या है, ये 2013 की रिपोर्ट है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2013। आज नंबर वन हार्ट डिजीज है, आज सारे विश्व में 2.25 करोड़ लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं, सिर्फ हार्ट की बीमारी से 2.25 करोड़, लगभग 100 में से 35 डेथ हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक से होती है, पैरालिसिस के अटैक से होती है। मतलब आर्टरीज, या तो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती है तो दिमाग की आर्टरीज ब्लॉक होती है, इसके कारण से वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हार्ट, दिमाग की आर्टरीज में या हार्ट की आर्टरीज में, उससे लोग मरते हैं 35% लोग, मतलब 2.25 करोड़ लोग टोटल वर्ल्ड में, 700 करोड़ में से 10 करोड़ लोग एक साल में मरते हैं, उसमें से 2.25 करोड़ लोग, 10 करोड़ भी नहीं मरते, लगभग 7-8 करोड़ मरते, 7 करोड़ लगभग मरते हैं टोटल, उसमें से 2.25 करोड़ सिर्फ हार्ट की बीमारी से मरते हैं, राइट। और बहने पीछे नहीं है हार्ट की बीमारी से मरने में, कितने 86 लाख डेथ लेडीज की होती है बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज, लगभग बराबर जितने मेल्स उतने फीमेल्स। और खाली अगर एचआईवी, एड्स, टीबी और मलेरिया तीनों को मिलाए तो सारे विश्व में सिर्फ 38 लाख लोग इन बीमारियों से मरते हैं, इसके कंपैरिजन हार्ट डिजीज से कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं। भारत अकेले भारत में 30 लाख लोग एक साल में मर जाते हैं हार्ट अटैक से, और उसमें से 15 लाख लोग 50 से नीचे की उम्र के होते हैं। अभी वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है ना, अभी आपको 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा सारे विश्व में, यही बात की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हमारा, हम अपने हार्ट को स्वस्थ बनाएं। टेक द रोड टू हेल्दी हार्ट, ऐसा रास्ता चुने जिससे कि हमारा हार्ट सदा के लिए हेल्दी स्वस्थ बन जाए। हार्ट चाहिए नहीं चाहिए, सभी के पास हार्ट है, जिनके पास हार्ट नहीं है बात उठाओ, है सबके पास, क्योंकि हार्ट अटैक सिर्फ उनको ही आ सकता है जिसको जिसको हार्ट है, सबके पास हार्ट है ना। तो अभी पहले 100 में से सिर्फ एक आदमी को हार्ट अटैक होता था, और 70 साल की उम्र के बाद होता था, 1960 की बात है, और अभी 2013 में लगभग 15% लोगों को हार्ट अटैक होता है और 20 साल की उम्र के बाद होता है, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 40, आधे हार्ट अटैक, 60% हार्ट अटैक 50 की उम्र के पहले हो जाते हैं। जो बीमारी 60-70 साल की उम्र की होती थी, अभी वो बीमारी कब आने लगी है, 20, 25, 30 साल में आने लगी है, ठीक है, तो डेंजरस बीमारी हुई ना। चलिए फिर लंग डिजीज, दूसरा नंबर है लंग की, फेफड़े की बीमारियां, स्ट्रोक, पैरालिसिस का अटैक तीसरा नंबर, फिर डायरिया, इन्फेक्शन, जो पेट के इन्फेक्शन से डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं, फिर चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया हो जाते हैं, या लंग्स में जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से पेट छाती में खांसी होती रहती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस अलग लिखा हुआ है, 6 नंबर पे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस अपने आप में एक बड़ा कारण है हार्ट डेथ का, न्यू बॉर्न डेथ, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, सुसाइड, आज आत्महत्या बहुत बढ़ गई है, इसमें सभी लोग, जवान भी बूढ़े भी, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, आज सभी लोग में आत्महत्या बढ़ती जा रही है, और रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और 10वां नंबर डायबिटीज, तो 10 मुख्य कारण है हार्ट आज मृत्यु के। अगर एक किसी भी सिटी में, बॉम्बे जैसी सिटी में, आप सब बॉम्बे से आए, सारे देश से आए, अलग देशों से आए, अलग अलग स्टेट से आए होंगे ना, ये ज्यादा बॉम्बे से कौन कौन आए, हाथ उठाए जो बॉम्बे से आए, काफी लोग बॉम्बे से आए, नीचे कर लेते, तो जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, कलकत्ता है, बड़ी बड़ी सिटीज जो है, अगर इनमें सर्वे किया गया, सर्वे करके देखा गया कि 100 लोगों को अगर लिया जाए, 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 15 को हार्ट की बीमारी है, 10 को डायबिटीज है, 20 लोगों को हड्डियां कमजोर है, हड्डियों की तकलीफ है, कोई ना कोई हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, 25 लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, 40 लोग मोटे हैं, 10 लोगों को सांस की बीमारी है, और ऐसे ही मतलब 10 लोगों को 5 लोगों को कैंसर है, 100 में से 5 लोगों को कैंसर है, तो अगर ऐसे देखते जाएं, 10 लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन है, 5% लोगों को सिर में दर्द है, ऐसे अगर आप देखें टोटल 5% लोगों को हार्मोन्स की, जैसे थायराइड की बीमारी है, तो अगर इसी तरह से हम सभी को देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। कितनी बीमारियां हैं 100 लोगों को, कितनी बीमारियां हैं 200, एवरेज कितनी हो गई, एक आदमी को 2, अपने अंदर देखो जरा, आपको आपको दिखाई दे रही है आपके अंदर भी 2 बीमारी दिखाई दे रही है, तो अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपके अंदर भी 2 बीमारी निकल आएंगे एवरेज, किसी के अंदर 2 से भी ज्यादा होंगी, 3, 4, 5 भी होंगी ना, तो 2 बीमारी आज, ये हेल्थ है आज की, अच्छी है ना। और जितने बड़े आदमी उनको ज्यादा बीमारियां हैं, जो अधिक पैसे वाले हैं ज्यादा समझदार हैं उनको 10-10 बीमारियां भी हैं। तो ये फिजिकल आज बॉडी की हेल्थ की हालत है। और मेंटल हेल्थ कैसी है? डिप्रेशन, डिप्रेशन बढ़ता है। 100 में से 10 लोगों को डिप्रेशन है, वो दवाई खाके अपना डिप्रेशन की दवाई लेके जीवन चलाते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, उनके जीवन में कोई भी उमंग उत्साह नहीं है। 100 में से 10 लोगों को इंसोमनिया है, अर्थात नींद ना आना, वो गोली खाके सोते हैं और गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती बहुत सारे लोगों को, है ना। चिंता सभी को है, आप में से कितने लोगों को चिंता है, चिंता नहीं है वो हाथ उठाओ, जिनको कोई चिंता नहीं है, पक्का पक्का, जिनको कोई चिंता नहीं है, सुन रहे हैं सभी को, ये ऐसे समझ के हाथ उठाना, जिनको कोई चिंता नहीं है वो हाथ उठाओ, 1-2 ऐसे हाथ उठा। चिंता पर समझते हैं, चिंता किसे कहते हैं? वेरी गुड, तीन लोगों, तीन इधर और एक इधर, माताओं को ज्यादा चिंता है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो उनको गुस्सा, जो गुस्सा करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, जो गुस्सा करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, जो गुस्सा नहीं करते वहां उठाओ, जो कभी गुस्सा नहीं करते वहां उठाओ, एक भी नहीं है, सभी गुस्सा करते हैं, क्या बात। एक भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर कभी सोचता कर नहीं, तो गुस्सा करने से काम बन जाते हैं ना, सभी काम बन जाते हैं, जो समझते गुस्सा करने से सब काम बन जाते हैं वहां उठाओ, कोई एक भी नहीं उठा रहा है। तो गुस्सा करने से काम भी नहीं बनते हैं तो फिर गुस्सा करते क्यों हैं हम? गुस्सा करना एक मेंटल डिजीज है, मानसिक बीमारी है, कि गुस्सा करने वाला खुद नहीं जल, खुद तो जलता है कि दूसरों को भी जलाता है ना। और एक रिसर्च पीछे आई थी कि एक बार गुस्सा करते हैं अंदर बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं कि 3 दिन तक आपकी बॉडी के अंगों पर असर पड़ता है, हर कोशिका पर असर पड़ता है, हार्ट पर, ब्रेन पर, पेट पर, किडनीज पर, खराब होती है उनसे गुस्सा करने से। फिर ग्रीड, लालच सभी के अंदर है, पैसे का लालच तो होता है किंतु नाम मान शान का लालच, पैसे का लालच भले ना हो किंतु नाम मान शान का लालच सबके अंदर है। नाम मान शान के लिए क्या करते हैं लोग? बहुत मेहनत करते हैं, है ना। लस्ट, काम विकार के आप रोज टेलीविजन में, अखबार में सुनते हैं कि रेप्स, किस तरह से रेप बलात्कार बढ़ रहे हैं। ईगो, अहंकार सबके अंदर है, अहंकार के कारण क्या हो रहा है? घर घर में लड़ाई है, ऑफिस में लड़ाई है। अटैचमेंट, मोह सबके अंदर है। लेजीनेस, आलस्य सबके अंदर है ना। फियर, फियर माने डर। ऐसा कोई जिसको कभी डर ना लगता हो, जिसको कोई डर ना हो हाथ उठाओ, जो जिनको कोई डर नहीं है, सबको डर है ना? आपको पता बीमारी शब्द कहां से है? बीमारी माना, बी माना डर, मारी माना बने रहना, तो बीमारी शब्द कहां से आया? डर बने रहना। अगर आपके अंदर डर है, डर बना रहता है, तो आप बीमार होने ही वाले हैं, या बीमार है ही है। और सिनिसिज्म, सिनिसिज्म माना दूसरे में दोष निकालने की आदत, हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, ये दोनों बहुत खतरनाक खतरनाक बिहेवियर्स हैं। इससे अंदर बॉडी में ऐसे केमिकल निकलते रहते हैं जो निरंतर आपकी सेल्स को डैमेज करते रहते हैं, हार्ट की सेल्स को, ब्रेन की सेल्स को, है ना, आपकी न्यूरॉन्स को डैमेज करते रहते हैं। टाइप ए बिहेवियर, टाइप ए बिहेवियर मींस, ये भाई साहब सीधे होकर इनको, इस आपके साथ वाले हैं, सीधे होकर बैठे, सीधे होकर बैठे। टाइप ए बिहेवियर, टाइप ए बिहेवियर का अर्थ है हमेशा प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मुझे मतलब हमेशा रहता है मुझे टाइम, ऐसे लोग क्या बोलते हैं, मुझे खाने की फुर्सत नहीं है, कई बार क्या बोलते हैं, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है ना, ऐसा ही बोलते हैं ना। कई लोग तो बोलते हैं मुझे मरने की फुर्सत नहीं है ना, तो इतना प्रेशर महसूस करते हैं टाइम का, वर्क का, अपनी हैबिट्स का, ये काम इसी ढंग से होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम में एक्यूरेसी, टाइम पर होना चाहिए, जैसे मैं को ऐसा होना चाहिए, कंपटीशन, कंपैरिजन, और पॉलीफेसिक, एक समय बहुत सारे काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि पास्ट का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर और अपना प्रेजेंट का प्रेशर, اپنا پریشر اور سماج کا پریشر سب ساتھ میں لے کے چلتے ہیں ایک ساتھ, تو ایسے لوگوں کو میکسیمم ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. رائٹ, اور یہ جو ہاسپٹلٹی کی میں نے بتائی آپ کو, یہ بہت ہی پوائزن. اگر آپ کسی کے پرتی ریونج فل بہیویئر رکھتے ہیں, من میں بدلنے کی بھاونا رکھتے ہیں, تو یہ ایسا بہیویئر جس سے آپ کے ایسے کیمیکلز نکلتے رہتے ہیں جو نرنتر دن رات آپ کو خطرہ پہنچاتے ہیں, اور آپ کی آرٹریز, ہارٹ کی آرٹریز ایسے بلاک ہو جاتی ہیں جو کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے, نہ بائی پاس ہو سکتا ہے نہ اینجیو پلاسٹی ہو سکتی ہے, لمبے لمبے بلاکس ہو جاتے ہیں جن کو مطلب کوئی اس پیشنٹ کی کوئی لائف بعد میں جا کے رہتی نہیں ہے, کوالٹی آف لائف ایک دم زیرو ہو جاتی ہے, مطلب ایک دم جیسے بس سمجھو کچھ بھی ویکتی کر نہیں سکتا ہے ڈھنگ سے. اس لیے کہا جاتا ہے فارگیو اینڈ فارگیٹ. اگر کسی نے آپ کے پرتی کچھ غلط کیا تو اس کو کیا کرو, کیا کرو, اپنا بھلا چاہتے تو کیا کرو, اس کو معاف کر دو اور بھول جاؤ, کیونکہ آپ معاف کرنے سے آپ کو فائدہ ہے, اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اگر آپ من میں ریونج فل بہیویئر رکھتے ہیں تو نقصان اس کو نہیں ہو رہا, نقصان آپ کو لگاتار ہو رہا ہے. تو ابھی تک کسی کے من میں کسی کے پرتی ہو ایسی بھاونا تو یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو معاف کر دو, رائٹ, جس سے کہ آپ کا ہارٹ برین سب اچھا ہو جائے گا. سوشل ہیلتھ کیسی ہے آج؟ ہیٹریڈ, آپس میں جیلسی, نفرت, گھرنا اور نفرت بہت زیادہ ہے, کمپیٹیٹو نیچر ہے, سب کمپیٹیشن کر رہے ہیں, تھیفٹس, ڈیکوئٹیز, ریپس اینڈ مرڈرس, آج سماج کی یہی نیوز ہوتی ہیں. آپ اخبار میں پڑھیں گے نا روز, سب سے پہلے پیج پر یہی سب خبریں بھری ہوتی ہیں. اور اسپرچل ہیلتھ کیسی ہے آج؟ آئیڈینٹی کرائسس ہے, سب آپس میں کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. پتی پتنی کو ایک ہی گھر میں رہنا ہے کنتو آپس میں روز کیا کرتے ہیں, کیوں روز کیا کرتے ہیں, پتنی سمجھتی میں زیادہ سمجھدار ہوں, پتی سمجھتا میں زیادہ سمجھدار ہوں, پتی سمجھتا پتنی کو میرا کہنا ماننا چاہیے, پتنی سمجھتی پتی کو میرا کہنا ماننا چاہیے, دونوں اپنی پہچان بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جب دونوں سمان ہیں, ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں, تو آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کبھی پہیے آپس میں, پر آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. تو یہ اگر فیلنگ جو من میں ہے, یہ اسپرچل ہیلتھ کی لیک آف اسپرچل ہیلتھ ہے. اگر یہ اٹینشن رہے کہ ہم آتما ہیں, ایک ہی پتا کے بچے ہیں, اور ہم جیون میں ساتھی ہیں, ہے نا, لائف پارٹنرز ہیں, ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ساتھ میں آئے ہیں, تو ایک دوسرے کو مدد کریں, جیون ساتھی بن کے رہیں. پر آج کل کیا بن کے رہتے ہیں, کیا بن کے رہتے ہیں, جیون ساتھی ہے, جیون ہاتھی, یہ ہاتھی میرے ساتھی. ہاتھی کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے نا, کھلانا مشکل, سلانا مشکل, سب کچھ مشکل ہوتا ہے نا, مینٹیننس بہت مہنگی ہوتی ہے ہاتھی کی نا. تو اس لیے آج سماج میں یہ بہت ہو گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بننے کی بجائے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں. بچے بھی ماتا پتا کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں, ماں باپ بچوں کو کئی بار ایسی من میں بھاونا رکھ لیتے ہیں, یہ بچہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. نہیں, جو ہمارے حساب کتاب ہے اس کے انوسار ہمیں جو ہماری ویکنیسز ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی اچھائی دیکھنی ہوتی ہے سمبندوں میں, تب ہمارے سمبند اچھے ہو سکتے ہیں, اور اسپرچل ایجوکیشن سے ہم یہ پراپت کر سکتے ہیں. کمیونل رائٹس, جو آج جگہ جگہ رائٹس ہوتے ہیں نا, اور ٹیررزم, آتنکواد, آتنکواد کا کیا علاج ہے, کمانڈوز, کیا علاج ہے, کمانڈوز ہیں, ٹاسک فورس بنائے جگہ جگہ, جتنے بھی آتنکوادی سب کو مار دیں. آتنکوادی کہاں سے آتے ہیں, ہمارے اپنے گھروں سے ہی آتے ہیں نا, کسی ماں باپ کے پاس جنم لیتے ہیں نا. اگر ہمارے اسکولوں کالجوں میں اگر اسپرچل ایجوکیشن دی جائے, یہ سب کو بتایا جائے کہ ہماری ریئلٹی کیا ہے, ہم کون ہیں, ہم سب کون ہیں, اور ہم سب کا کون ہے, ہم سب آتمائیں ہیں, ایک ہی پرم پتا, چاہے ہندو ہوں, چاہے مسلم ہوں, چاہے سکھ ہوں, چاہے عیسائی ہوں, اور ایک ہی باپ کے بچے ہیں, تو کیا ہوگا, پھر ہوں گے آتنکواد ہوگا پھر کیا. اگر بچپن سے ہی اگر ویلیو ایجوکیشن دی جائے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں, تو یہ پرابلم ختم ہو سکتی ہے, نہ کہ ہم نے تھوڑے سے آتنکوادی مار دیے تو پرابلم, اور 10 ماریں گے 50 اور پیدا ہو جاتے ہیں, اس کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا ہے. اور خوشی کیا چیز ہے, کیا ہنسنے کو خوشی کہتے ہیں کیا؟ آج کل لوگ بہت ہنستے ہیں, جو سے ہنستے ہیں, جگہ جگہ گارڈنز میں آج کل क्या बनाते हैं, लाफ्टर क्लब्स, कैसे हंसते हैं जोर से। आपको आपने रामायण देखा था, रामायण सीरियल देखा था, उसमें हंसता कौन है और मुस्कुराता कौन है, कौन हंसता है? राम हंसता है, रावण हंसता है और मुस्कुराता कौन है, राम मुस्कुराता। राम पूरे रामायण में एक बार भी हंसा क्या? हंसा एक बार भी? पर खुश कौन था, रावण खुश था कि राम खुश था? अंदर से खुश राम था। क्यों खुश था? तो हंसने को खुशी नहीं कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट लाफ्टर। बल्कि जो जो से हंसने से तो क्या होता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है ना, जोर से हंसते हैं ना कई बार ब्रेथ होल्डिंग हो जाती है और अचानक से ब्रेन की नस पड़ जाती है, ये अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो ये जो क्या हुआ, हाँ जी, जो रियल जो कारण है, जो रियल इंटरनेशनल डेफिनेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत परिभाषा हेल्थ की क्या है, सॉरी हैप्पीनेस की है, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट। खुशी अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। और ये कब आती है, जब आप अंदर से आप संतुष्ट होते हैं। तो अगर आपके पास संतोष है, आप संतुष्ट हैं, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, या अपना जीवन जो जो भी जी रहे हैं, अगर आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। खुशी जो है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आती खुशी, बाहर से नहीं। कई लोग कहते हैं खाना खा के खुशी, किसी पार्टी में गए आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा तो खुश होते रहते हैं। खाने में खुशी है क्या, गार्डन में खुशी है क्या? खुशी अंदर की बात है। जब खुश आप अंदर से संतुष्ट हैं तो आप खुश रहते हैं, कैसी भी सर्कमस्टेंस हो। और आप अंदर से दुखी हैं तो बाहर कुछ भी रखा हो, कितना भी सुंदर वातावरण हो, कितनी भी सुंदर बात हो, तो भी आप दुखी महसूस करेंगे ना? तो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन एंड डू नॉट सीक इट विदाउट। इसको बाहर मत खोजो, खुशी को बाहर मत खोजो, ना खाने में खोजो, ना स्थान में खोजो, ना पैसे में खोजो, वहां पर इस खुशी नहीं है। कई लोग अपना जीवन लगा देते हैं पैसा कमाते कमाते, खुशी मिलेगी, खुशी मिलती है क्या? बॉम्बे वाले बताओ, पैसा कमाते वाले खुशी मिली, खुश हो गए? खुशी नहीं मिलती है। पार्टी में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके खाना खाने से खुशी मिलती है क्या? वापिस आते पेट में गैस भर जाती है ना, भारी पेट हो जाता है वो। फिर क्या लिखा होता है, हाजमोला खूब खाओ, हाजमोला से बचाओ, है ना? तो अगर इतना खाओ क्यों, जो हाजमोला खानी पड़े आपको ना, उसका दर्द, फिर खाने के बाद उसका दर्द है ना, सहना पड़ता है ना। तो हैप्पीनेस इज नॉट ए प्लेस, इट इज ए डायरेक्शन। कई लोग कहते हैं कोई स्थान नहीं है, खुशी को स्थान नहीं है, ये डायरेक्शन है, इस रास्ते पे चलेंगे तो हम खुश रहेंगे, राइट? आज की खुशी कैसी है, आज की फिजिकल हैप्पीनेस कैसी है? ईटिंग ए वैरायटी ऑफ जंक फूड्स, पार्टी में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, आर्टरी ब्लॉक करते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, डायबिटीज बढ़ाते हैं, है ना, खुशी मिली उससे? ईटिंग वैरायटी ऑफ जंक फूड्स, फिजिकल लग्जरी बिलोंगिंग्स, एक बड़ा अच्छा सा मोबाइल ले लिया 35,000 का, खो गया तो रोना शुरू हो गए, है ना, नहीं किसी ने चोरी कर लिया तो दुखी हो गए, तो मोबाइल है बस, अच्छा टेलीविजन है, अच्छी कार है, बस इसी में ध्यान रहता है, ये हमारी फिजिकल हैप्पीनेस है। ये अविनाशी है क्या? थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। अचानक आपने नई नई कार ली, उसमें किसी ने स्क्रैच मार दिया, थोड़ा साइड लग गई, तो क्या होगा, सारा टाइम कार को देखते रहोगे और मन दुखी हो जाएगा, है ना? एक्सकर्शन, लोग घूमने चाहते हैं, चलो शिमला चलते हैं, मसूरी चलते हैं, ऊटी चलते हैं, आपके वहां पर क्या चीज है, बॉम्बे के पास महाबलेश्वर है, वहां चलते हैं ना, लोनावाला चलते हैं ना, तो वहां खुशी है क्या? वॉचिंग टीवी एंड सिनेमा, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, टीवी में कोई फिल्म देखते हैं, तो वहां खुशी होती है क्या? और सिर दर्द हो जाता है। تو اس میں خوشی نہیں ہے. مینٹل ہیپینس کیا کرتے ہیں؟ لافنگ لافنگ لافٹر کلب میں جاتے ہیں, ریڈنگ ناولس پڑھتے ہیں, کیپنگ پیٹس, کتا بلی سے پیار کرتے ہیں, ہے نا. آدمی سے پیار نہیں کرتے, کس سے پیار کرتے ہیں؟ ودیشوں میں تو کتے بلی سے ہی پیار کرتے ہیں, ڈیکوریشن گھر کو سجا لیتے ہیں اور فیشن کرتے ہیں, ہے نا. اچھی اچھی ڈریس پہن کے, اچھے اچھے کریم پاؤڈر لگا کے, ہے نا. فیس پہ کیا لگاتے ہیں آج کل, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں فیس پہ, کچھ کرتے ہیں, بہنوں کو زیادہ پتہ ہے نا, تو وہ فیس پیکس لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, اور پھر بہت خوش ہوتے ہیں, بہت سندر ہو گئے, ہے نا. پھر فیس پہ ایکزیما ہو جاتا ہے بعد میں, نا. پھر دکھی ہو جاتے ہیں. سوشل ہیپینس کیا ہے؟ پارٹیز میں جاتے ہیں, اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں, وہاں جا کے کچھ لوگوں سے ملتے ہیں, آرفنیجز میں جاتے ہیں, اناتھالیہ میں جاتے ہیں, ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, جیلز میں, کورٹس میں جا کے لوگوں کو تھوڑی مدد کر دیتے ہیں تو لگتا ہے خوشی ہو گئی, پر وہ بھی سچی خوشی نہیں ہے. اسپرچل ہیپینس, مندر بنا دیتے ہیں, اس پہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں, منتراز بولتے رہتے ہیں, ہے نا, کچھ اندر اندر رام رام کی مالا جپتے رہتے ہیں, نا. شاستر پڑھتے ہیں, مہابھارت رامائن پڑھتے ہیں, نا. تیرتھ یاترا پہ جاتے ہیں, امرناتھ, بدری ناتھ, کیدار ناتھ جاتے ہیں, نا. کچھ لوگ پھر وہیں رہ جاتے ہیں, ڈونیشن کرتے ہیں, کوئی دان کرتے ہیں, کوئی ڈیووشن کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. تو مطلب یہ سادھن ہے کیا؟ اس سے خوشی ملتی ہے کیا؟ خوشی ملتی ہے, تھوڑی دیر کی خوشی ملتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے. از پرزنٹ اسٹیٹس آف ہیپینس از آؤٹر ہیپینس. آج ہماری خوشی کیسی ہے دنیا میں؟ باہری خوشی ہے, اور تھوڑے دیر کے لیے, ٹرانزٹری ہیپینس, تھوڑی دیر کے لیے, اینڈ ناٹ انر ہیپینس. اندر کی خوشی نہیں ہے, اندر کی خوشی پرماننٹ ہوتی ہے. از اٹ ہیپی لائف؟ کیا ہماری لائف خوش ہے؟ جو سمجھتے ہیں ہم سدا خوش رہتے ہیں, وہاں سے تو جو کہتے ہیں ہم سدا خوش رہتے ہیں, ہم کبھی دکھی نہیں ہوتے, ہم اپنے جیون سے پوری طرح سنتوشٹ ہیں, وہاں سے تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم خوش نہیں ہیں. از اینی بڈی ہیپی ان دس ورلڈ؟ اس سنسار میں کوئی خوش ہے؟ امریکہ کا پریزیڈنٹ خوش ہے؟ اوباما جی خوش ہیں؟ ہمارے دیش کے سب سے امیر آدمی مکیش امبانی خوش ہے؟ ہمارے دیش کے راشٹرپتی خوش ہیں؟ پردھان منتری خوش ہے؟ اچھا ہیلتھ منسٹر خوش ہے؟ ہمارے مودی جی خوش ہیں؟ کسی سے پوچھ کے دیکھو, سب کہیں گے ہم دکھی ہیں, مہا دکھی ہیں. کیوں نہیں ایسا ہے؟ کیونکہ ہیپینس کمز فرام پیورٹی آف مائنڈ اینڈ انٹلیکٹ. جب ہمارا من اور بدھی شدھ ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. پیس, جب ہمارے اندر شانتی ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. ٹروتھ فلنیس, جب ہم ستیتا کے مارگ پر ہوتے ہیں تو خوش رہتے ہیں. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جھوٹ میں رہتے ہیں تو ہمیں اندر ڈر لگتا رہتا ہے, پتہ نہیں ہمارے جھوٹ نہ پکڑا جائے, ہم خوش نہیں رہ سکتے ہیں. فیئر لیسنیس, جب ہم نربھے ہوتے ہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں. اندر ڈر ہوگا تو کیسے خوش رہیں گے؟ ڈر والا ویکتی کیسے مسکرائے گا؟ پاور آف ٹالرنس, اگر آپ کے اندر سہن شکتی تو آپ خوش رہ سکتے ہیں. سہن شکتی کب آئے گی؟ سہن شکتی مان لیجیے ایک ویکتی, آج کا انسان پتا کیسا ہے؟ ایک گبارا ہوتا ہے نا, گبارا, بڑا گبارا, اس میں پھونک, ہوا بھرتے جاؤ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو آج کا انسان بھی ایسا ہی ہے, اس کو کچھ اس کی بڑائی کرتے رہتے ہیں, کچھ پیسہ ملتا رہتا ہے, بزنس میں فائدہ ہوتا رہتا ہے, وہ پھول کے کپا ہوتا جاتا ہے, بڑا گبارے کی طرح پھولتا جاتا ہے, سمجھتا میرے جیسا کوئی انسان دھرتی پہ نہیں ہے, بہت خوش رہتا ہے. اور کوئی وہ گبارے میں ایک آدمی سوئی لگا دے تو کیا ہوگا؟ ایک نیڈل لے کے آئے, آلپن لے کے آئے, لگا دے تو کیا ہوگا؟ گبارا, اتنا بڑا گبارا کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا سا ہو جائے گا. ایسا ہی آج کا انسان ہے, تھوڑی سمسیا آ جائے, تھوڑی پریشانی آ جائے, تھوڑا نقصان ہو جائے, دیکھو ابھی بہت خوش ہے, ابھی دیکھو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, خوشی غائب, جیسے اس کے جیسا دکھی ویکتی کوئی نہیں ہے دھرتی پر. تو اگر آپ کے اندر سہن شکتی ہے تو ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں. ملنے پر کچھ ملنے پر زیادہ خوش نہیں ہوں گے, اور کچھ کھو جانے پر زیادہ دکھی نہیں ہوں گے, کیونکہ نہ ہم کچھ لے کر کے آتے ہیں, نہ کچھ ہم لے کے جاتے ہیں. اگر ہم ریئلٹی کو ریئلائز کرتے رہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں. پھر ہمارا سبھاؤ سرل سبھاؤ ہونا چاہیے. سرل مانا ہمیں جو ملا, جتنا ملا, جیسا ملا, اس میں خوش رہیں, تو ایسا ویکتی خوش رہتا ہے ہمیشہ. سرل سبھاؤ والا, سرلتا والا ویکتی. سویٹنس, جو لوگ میٹھا بولتے ہیں نا, مدھرتا, مدھرتا بہت اچھا گن ہے. جو لوگ مدھر بولتے ہیں, میٹھا بولتے ہیں, وہ سدا خوش رہتے ہیں. कड़वा बोलने वाला व्यक्ति कभी खुशी नहीं दे सकता। देखो तीन, आपने तीन असुरों का नाम सुना होगा, भस्मासुर, अकासुर, बकासुर, सुना है नाम शास्त्र में, नाम सुना होगा कभी आरती में, किसी में सुनते हैं ना हम लोग शास्त्र पढ़ते ना, तो तीन असुरों का नाम गाया जाता है, भस्मासुर, अकासुर, बकासुर। जानते हैं इनको आप, कौन है ये लोग? कोई सचमुच में भस्मासुर नाम का व्यक्ति था क्या, ये अकासुर बकासुर था क्या? नहीं, तीनों असुर हमारे अंदर होते हैं। भस्मासुर हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, ये हैं भस्मासुर, जो हमको भस्म करती रहती हैं, हम इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं सारी उम्र और भस्म हो जाते हैं, एक दिन जलते रहते हैं इच्छाओं के पीछे, उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला, मुझको भी चाहिए, मुझको भी ये भी चाहिए, मुझको ये भी चाहिए, मुझे कोई भी चाहिए, है ना? ये इच्छाएं कामनाएं भस्मासुर है। तब आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, जब इस भस्मासुर को मार दो। नहीं तो भस्मासुर क्या करता है, अपने सिर पे हाथ रखे खुद ही भस्म हो जाता है ना, यही कहानी है ना। अपनी इच्छाएं खुद को मारती रहती हैं, खुद को बीमार करती रहती हैं, रोगी बनाती रहती हैं, हमारी खुशी गायब करती रहती हैं। तो भस्मासुर को मारना है कि नहीं मारना है? भस्मासुर आपके अंदर ही, हम सबके अंदर है, उसको मारना है अगर खुश रहना है तो, ठीक है। दूसरा है अकासुर, अकासुर माना अक, माना अक होता है अक्का फूल, अक्का फूल जहरीला होता है, जहरीले बोल, जो जहरीला बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, ये सबसे पहले हमें दुखी करता है, फिर दूसरों को दुखी करता है, पहले हमारी खुशी गायब करता है, फिर दूसरे की खुशी गायब करता है। तो पहले भस्मासुर को मारो, उसके बाद किसको मारो, अकासुर को मारो, ठीक है। और फिर कौन है, बकासुर। बकासुर क्या, किसे कहते हैं? बकासुर माना बक बक, है ना, व्यर्थ बोलना, फालतू बोलते रहना, फालतू बातें करना, फालतू की कार्य में लगे रहना, जिससे किसी ना किसी, ना आपको फायदा ना किसी और को फायदा, समय ऐसे व्यर्थ गवाना, ये भी एक ऐसा ऐसा राक्षस है, ऐसा असुर है जो हम सबके अंदर है, ये भी हमारी खुशी गायब करता है, हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। तो तीनों राक्षसों को मार दिया, यहां पे ये पक्की करके जाना, तीनों को मार के जाना। यहां पे जो आपको सिखाया जाएगा उसमें तीनों को मारने का अस्त्र, हथियार आपको दिया जाएगा, उसको तीनों को मारने का, उस हथियार को लेके जाना, ठीक है। तीनों मर जाएंगे तो आप सदा के लिए खुश भी रहेंगे, सदा स्वस्थ भी रहेंगे, ओके। लार्ज हार्टेडनेस, अपने दिल को बड़ा बनाओ, इस वाले दिल को बड़ा नहीं ना लेना, इस दिल को बड़ा बनाओगे तो क्या होगा, सांस नहीं आएगा, चलते फिर बैठे बैठे भी सांस फूलेगा, है ना। उदार दिल का मतलब बड़ी दिल, बड़ी दिल माना किसी की गलतियां देख के आप टेंशन में मत आ जाओ, जीवन में आपने भी गलतियां की हैं, आपकी गलतियों को लोगों ने माफ किया है, आप भी अपने बच्चों की गलतियां, अपने दोस्तों की गलतियां, अपने साथियों की गलतियां, अपनी पत्नी की गलतियां, अपने पति की गलतियां, अपने मां बाप की गलतियां, उनको देखे इग्नोर कर दो, माफ करो, इसे कहते बड़ी दिल। ऐसा जो व्यक्ति सदा खुश रहता है, छोटी दिल वाला व्यक्ति दूसरों को देखा तुरंत उसकी तबीयत खराब हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। एम्पैथी, कंपैशन, रहम, इंसान का कर्म है, इंसान की नेचर है रहम करना सब पर, किसी दुखी को देख के, परेशान व्यक्ति को देख के उस पर रहम आता है ना, वहीं आता रहम, सिर्फ इंसान को रहम आता है, बाकी किसी को रहम नहीं आता है। कुत्ते को देख के, कुत्ते को कुत्ता पड़ा हो दूसरे कुत्ते को रहम आता है उसके ऊपर, क्या रहम आता है? बंदर बीमार, बंदर को पड़ा हो, एक्सीडेंट हो गया, दूसरे बंदर उसके पास आके उसकी मदद करते हैं क्या? मनुष्य कोई चोट लग जाती है, कुछ होता है, लोग उसको उठा के उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, जानवर कभी किसी की मदद नहीं करते, इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं। हॉस्पिटल इंसान बनाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, सड़कें इंसान बनवाते हैं, धर्मशालाएं इंसान बनवाते हैं, ताकि दूसरों को सुख मिले, इंसान की नेचर है ना। लव, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार से खुशी पैदा होती है। आज का इंसान कैसा है? स्वार्थी प्यार, सेल्फिश लव करता है। एक बार मेरे पास, मेरे मोबाइल पे SMS आया था, तो उसमें था कि एक मछली होती है ना, एक छोटी मछली, बच्ची होती है, बेबी फिश, अपनी मां से कहती है, मदर Why can't we live on the earth? कि माँ हम धरती पे क्यों, हम मछलियां धरती पे क्यों नहीं रह सकती हैं? उसकी मदर ने पता क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया होगा? नो चाइल्ड, अर्थ इज मेंट ओनली फॉर सेल्फिशेस. धरती किसके लिए बनी है? सेल्फिशेस के लिए बनी है, सेल्फिश लोगों के लिए बनी है. पानी में फिश रहती हैं और धरती पर कौन रहते हैं? सेल्फिश. ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, गलत है. क्योंकि मैंने कहा ना, इंसान ही रहम करते हैं, इंसान ही दूसरे पर दया करते हैं. तो इंसान की नेचर है सबकी मदद करना और सेक्रीफाइस, त्याग करना इंसान की नेचर है. और संतुष्ट कहते हैं ईश्वर, समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं. तो अगर हम ये करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे. आज 95% से अधिक बीमारियां कैसी हैं? स्ट्रेस, तनाव से पैदा होती हैं और साइकोसोमेटिक हैं. ठीक है, साइकोसोमेटिक माना मन से पैदा होती हैं. सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या इलाज है इसका? हॉस्पिटल जगह जगह बन गए, डॉक्टर्स बहुत सारे पैदा हो गए, नर्सिंग होम्स बहुत सारे बन गए, गली गली में डॉक्टर्स हैं आज, है ना, और बीमार घर घर में है. तो क्या करें? और डॉक्टर खुद बीमार है. डॉक्टर की हालत मैं आपको दिखाता हूं. आम पॉपुलेशन को 14% लोगों को हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर्स 18% डॉक्टर्स को हार्ट की बीमारी है. मोटापा 35% लोग, आम लोग मोटे हैं और 55% डॉक्टर्स मोटे हैं. आधे से ज्यादा डॉक्टर्स मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं. ब्लड प्रेशर 27% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, जनरल पॉपुलेशन में डॉक्टर्स को 35% डॉक्टर्स को हाई ब्लड प्रेशर है. तो डॉक्टर्स को ज्यादा बीमारियां हो रही हैं. तो क्या करें? डॉक्टर्स खुद ही बीमार हैं. तो डॉक्टर्स भी अपनी हेल्थ का केयर जानते हैं तो भी अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं है. जो डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में डाइट के बारे में बोल के आते हैं, आप तला हुआ नहीं खाओ, पराठा पकोड़ा नहीं खाओ, नॉनवेज नहीं खाओ, उससे हार्ट की बीमारी, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर वाली चीजें नहीं खाओ, मिठाइयां नहीं खाओ. जब कॉन्फ्रेंस का लंच होता है, लंच पीरियड होता है, तो लेक्चर जो अंदर दे रहा होता है, बाहर आके क्या देखो, तो बाहर देखो तो जो आदमी लेक्चर दे रहा है सबसे पहले नॉनवेज की लाइन में वही लगा होता है. तो जानना खाली आवश्यक नहीं है, अंदर विल पावर आनी चाहिए. विल पावर कैसे आएगी? विल पावर मेडिटेशन से आती है. ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं, ये इसको मैं उम्मीद कर देता हूं. ये देखिए हमारा ब्रेन है, आप देखिए, ये देखना जल्द आपने सब इसमें देखो, ये हमारा ब्रेन है. ये ब्रेन हमारा 100 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है. ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ऐसे ऐसे धड़क रहा है दिमाग में, यहां पर होता है हाइपोथैलेमस. इसी के अंदर आत्मा रहती है, इसी की यही सीट ऑफ द सोल है. और जो कुछ भी आप सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, जल्दी करते हैं, तो ऐसे केमिकल बनते हैं. वो सोच किसमें बदल जाती है? केमिकल में बदल जाती है. वो ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स में बदल जाती है, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में बदल जाती है. और एक सेकेंड से भी कम समय में वो कोशिकाएं सारी बॉडी कोशिकाओं पर फैल जाती है. हमारी बॉडी में लगभग 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं पे उसका असर देखिए. ये जो देख रहे हैं लाल लाल रंग के, ये लाल लाल रंग के मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर से बम्बार्डमेंट, जब भी आप सोच रहे हैं तो उसकी बम्बार्डमेंट होने लगती है, वहां से निकलने लगते हैं ये लाल लाल रंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं. और ये मॉलिक्यूल्स हमारी हर कोशिका पे पहुंच जाते हैं और वहां पर उस कोशिका पे पहुंच करके ये ब्लड से होते हुए, खून से होते हुए फिर हमारी हर कोशिका पे, ये दिखाई जाएंगी अभी, कोशिका दिखाई जाएंगी, ये खून की नाली से जा रहे हैं. ये सेल्स हैं, ये देख रहे हैं जो हल्की, ये जो ग्रीनिश ऐसे अमीबा जैसी हैं, ये सेल्स हैं. और इन सेल्स पे रिसेप्टर्स हैं. ये रिसेप्टर जैसे जैसे ताला और चाबी होती है ना, वो रिसेप्टर्स आके उस पर लग जाते हैं और लग करके उसमें फिर वो जैसे जैसे वो आके एक्यूरेट सेट हो जाएगा, फिर सेल्स को उसी हिसाब से मानना पड़ता है. जो मैसेज ऊपर से आया ना, गुस्से का मैसेज आया, तो वो सेल पे भी गुस्सा जाएगा. उदासी आई तो सेल भी उदास हो जाएगी. तो जो भी भावना आपके अंदर, देखिए सेल की क्या हालत होती है. खुशी की बात है तो खुशी की भावना है ना, दुख की बात है दुख की भावना. एक एक पिकनिक है, ये पार्टी दिखाएंगे आपको, अभी दिखाएंगे, दिखाइए. ये देखिए एक पार्टी है जिसमें खुशी की पार्टी है, कुछ लोग तो खुशी मना रहे हैं, किंतु ये फोटोग्राफर है, इसके मन में इसी के प्रति उल्टी नेगेटिव भावना है, तो दुखी हो रही है वो, है ना. तो वही 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 स्थिति किसी के लिए बहुत सुखदायी हो सकती है, किसी के लिए बहुत दुखदायी हो सकती है, राइट। तो ये जैसे जैसे हमारे केमिकल बनाते हैं, जैसे हमारी एटीट्यूड होता है उसके अनुसार केमिकल यहां बनते हैं हाइपोथैलेमस में, और वो वो एक सेकंड से भी कम समय में सेल कोशिका पे पहुंच जाते हैं और कोशिका फिर वो उसी अनुसार वो कार्य करती है और वो सारी बॉडी में उसकी रिएक्शन, जैसे आपने देखा होगा अचानक को गलत न्यूज मिलती है, एक सेकंड में आपकी बॉडी पे सारे उसका असर आ जाता है। खुशी वाली खबर होती है तो एक सेकंड में आप खुश हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर दुख वाली बात होती है तो एक सेकंड में आपकी से जान निकल जाती है, नहीं। तो हर सोच का असर, इसलिए कहा जाता है सोने सोचने से पहले भी सोच लो, राइट। चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव मनमाना टीम थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, अगर आपकी टीम नेगेटिव है तो हाइपोथैलेमस में नेगेटिव केमिकल बनते हैं और आपकी कोशिकाओं पे एक सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाते हैं और फिर वो टेंशन वाले हार्मोन्स निकलते हैं और आपका आपके अंदर दो सिस्टम है, एक अलार्म सिस्टम है खतरे की घंटी है और एक शांति की घंटी है, अंदर सिस्टम सारी सेल्स में फैला हुआ है। तो जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातों को याद करते हैं, जीवन के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, नेगेटिव भावनाएं रखते हैं किसी अपने प्रति या किसी और के प्रति, तो ऐसे नेगेटिव केमिकल बनते हैं और लाल तार एक्टिव हो जाती है, खतरे वाली घंटी बज जाती है सारी बॉडी में, और उससे क्या होता है फीलिंग ऑफ डिसीज, फाइट और फ्लाइट, दर्द लगता है या अंदर उदासी आ जाती है और एनर्जी खत्म हो जाती है। इसकी बजाय अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातों को याद करते हैं, तो क्या होता है आपके अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं। एंडोर्फिन्स का अर्थ क्या है, वो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मॉर्फिन जैसे केमिकल्स हैं, मॉर्फिन माना अफीम, सबसे स्ट्रांगेस्ट पेन किलर दुनिया में क्या अफीम है, मॉर्फिन है। कैसा भी दर्द हो, कमर का दर्द, हार्ट का दर्द, सिर का दर्द, कोई दर्द हो बॉडी में, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दो दर्द खत्म हो जाएगा। और खाली दर्द खत्म नहीं होगा, आपको फीलिंग ऑफ वेलबींग खुशी आएगी, अंदर से लगेगा मैं बहुत ताकत आ गई है, मरने वाले होंगे लगेगा नहीं नहीं मरूंगा मैं, ऐसा फील होगा, एनर्जी भर जाएगी बहुत जोर से। इसलिए अफीमची जो होते हैं ना, अफीम खाने वाले नाली में पड़े होते हैं किंतु समझते हैं दाल उसपे शाही दरबार शाही गद्दे पे लेटे हुए हैं, और ताकत बहुत महसूस करते हैं अपने अंदर, वो तो आदत पड़ जाती नशे की उनको, और आज इतनी अफीम खाने से उनको नशा आता है, कल बहुत ज्यादा ना खाने से, उसके बाद और ज्यादा खाने से वो फिर शरीर को नुकसान करने लगती है, किंतु जो अंदर की अफीम नुकसान नहीं करती है। आप तो अपनी टीम को पॉजिटिव बनाइए, अपने मन को पॉजिटिव बनाइए, तो आपकी अफीम अंदर निकलती रहेगी और रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव रहेगा, जिससे कि आपके अंदर खुशी, हेल्थ और शक्ति फील होती रहेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो आप और इसके हमारे बॉडी में 8 अंग होते हैं और 8 अंग में से जन्म से एक अंग कमजोर होता है तो उस अंग पर उसका विशेष असर पड़ता है। जैसे किसी का हार्ट कमजोर है, गलत सोचा उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा, गलत सुना देखा, गलत सुना, गलत खाया, गलत बोला, ठंडी हो गई गर्मी हो गई हार्ट छाती में दर्द हो जाएगा। किसी का फेफड़े कमजोर, जन्म से कमजोर, बनने में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो गलत सोचा दमे का अटैक हो जाएगा, गलत देखा दमे का अटैक, गलत बात सुन ली दमे का अटैक, गलत बोल दिया दमे का अटैक, गलत खा लिया दमे का अटैक, ठंडी हो गई दमे का अटैक, गर्मी हो गई दमे का अटैक। तो हमारे 8 अंग जन्म से हर एक का कमजोर होता है, उसी अंग पे उसका असर पड़ता है। जैसे एक मां के 5 बच्चे हो, एक बच्चा 7 महीने का पैदा हो जाए, अंडरवेट बच्चा है, तो सारी बीमारियां उसको ही आती हैं, मां को सारी उम्र उसका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही जो अंग आपका कमजोर है उसका स्पेशल ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी देखिए, अभी तो हमें अपनी जीवन शैली बदलने की आवश्यकता है हमको, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं ये बताता हूं आपको। स्ट्रेस, तनाव किसे कहते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। प्रेशर इंटरनल प्रेशर हो सकते हैं, अंदर के प्रेशर, जैसे मुझे मान लीजिए मेरी नेचर जल्दीबाजी करने की नेचर है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मैं बहुत बात जल्दी बात पे किसी पे उदास हो जाता हूं, बहुत सेंसिटिव नेचर मान लीजिए मेरी है, ये जन्म से मतलब मेरी यंग एज से मेरी लाइफ ऐसी नेचर ही बनी हुई है, जैसे माँ बाप को देख के या घर में किसी को देख के बनती है नेचर, वो नेचर मेरी है। मैं चाहूं तो आज एकदम में बदल सकती मेरी नेचर, नहीं बदल सकती ना, मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, या पेट में खराबी है, कैंसर है, मैं चाहूं खत्म हो जाए, हो सकती है ऐसे इमीडिएटली, नहीं हो सकती ना, टाइम लगेगा ना ठीक होने में। ऐसे ये मेरा अंदर का प्रेशर हो गया, बाहर का प्रेशर परिवार का प्रेशर, पत्नी है, पति है, माँ बाप है, बच्चे हैं, उनकी डिमांड्स हैं, कोई घर में बीमार है, उनको भी हम ठीक नहीं कर सकते, बदल भी नहीं सकते, है ना, चॉइस है बदलने की, क्या बदल नहीं सकते। ऐसे फिर हमारा जो है हमारे जो फाइनेंशियल प्रेशर है हमारे को हमें खर्चे बहुत सारे हमारे ऊपर सिर पे कोर्ट का केस है या कोई ट्रैफिक बहुत बाहर है गर्मी बहुत है पॉल्यूशन बहुत है ये बाहर के प्रेशर्स हैं ठीक है तो प्रेशर्स को आप बदल नहीं सकते हैं किंतु ये जो तनाव की जो डेफिनेशन है वो है प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ अंदर माना आत्मिक शक्ति जब ये रेशियो एक से अधिक होता तो हम तनाव महसूस करते हैं तो अगर आप आत्मिक शक्ति को बढ़ा दें तो क्या होगा अगर आप आत्मिक शक्ति को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा वो फिर आपकी क्या होगा आप कभी भी तनाव से तनाव कभी होगा ही नहीं आपको आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे राइट तो स्ट्रेस फ्री रहने का फॉर्मूला क्या हुआ आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ ऐसा पॉसिबल है आप समझते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है रहा जा सकता है आप शांति मन में आए आपने शांति मन में देखा अभी लोगों से मिले लंच किया हो ना लंच में गए थे वहां देखा किसी को टेंशन में देखा किसी को आपने खाना बनाने वाला को खाना खिलाने वाले को देखा जब आप ट्रांस यहां अकोमोडेशन में आए तो आपको देखा किसी को टेंशन में देखा था आपने आपने बेगमपुर देखा है कभी जिन्होंने बेगमपुर देखा हाथ उठाओ कहां पर है बेगमपुर बेगमपुर का मतलब बेगम जहां कोई गम ना हो जहां कोई गम ना हो तो जब आपकी आत्मिक शक्ति ज्यादा है तो आप किसके बादशाह बन जाते हो बेगमपुर के बादशाह तो आप अगर अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे तो आप बेगमपुर के क्या बन जाएंगे बादशाह बन जाएंगे और आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं सिर्फ एबीसीडी से बढ़ा सकते हैं एबीसीडी का मतलब क्या है ए फॉर आत्मा मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं यहां पर यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर 3 इंच यहां से नीचे मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं मैं आत्मा शरीर की माने मैं आत्मा आंखों से देखती हूं कानों से सुनती हूं मुख से बोलती हूं मैं आत्मा हार्ट को चला रही हूं इसलिए कविता आई थी वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये कविता इसी पे लिखी गई थी हाउ आई वंडर व्हाट यू आर तो पहली बात है मैं आत्मा हूं मैं देह नहीं हूं देह तो एक दिन छूट जाएगी मैं आत्मा निकल जाऊंगी फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा तो ये अगर अपने आप को चलते फिरते महसूस करें कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं आत्मा की नेचर ही शांति है प्यार है खुशी है आनंद है जैसे पानी की नेचर क्या है ठंडक है आग की नेचर गर्मी है ना तो ऐसे आत्मा की नेचर 7 गुण है आत्मा के नेचुरल तो वो अपने आप को महसूस होने लग जाएंगे दूसरी बात बी फॉर बाबा मीन्स परमात्मा गॉड हम सब आत्माओं का पिता कौन है वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है पर वो परम है सुप्रीम है वो परे से परे रहने वाला इन सूर्य चांद तारों से भी पार इसलिए उस कविता में आता है अप अबाउ द वर्ड्स ऑफ हाई लाइक ए डायमंड गलत लिखा इन द स्काई अबाउ द स्काई लिखना चाहिए था लिख दिया इन द स्काई तो होना चाहिए अबाउ द स्काई वो परमात्मा के लिए 2 लाइन लिखी गई एक और सितारा है जो सूर्य चांद तारों से भी परे रहता है ना वो परमात्मा है राइट तो हम आत्मा है वो परमात्मा है हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा उसे हम बाबा कहते हैं सी फॉर कनेक्शन हमारे सर्व संबंध उसके साथ हैं हम आरती में भी गाते हैं ना तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तो ये हमारे सर्व संबंध उसके साथ है वो हमारा माँ भी है बाप भी है शिक्षक भी है सतगुरु भी है बंधु भी है सखा भी है साजन भी है सर्जन भी और बच्चा भी है तो जितना हम उसको बार बार एक एक संबंध से याद करते हैं तो उतनी शक्ति हमारे अंदर करंट क्योंकि वो 7 गुणों का सागर है वो ज्ञान का सागर है पवित्रता का सागर है शांति का सागर है प्रेम का सागर सुख का सागर आनंद का सागर शक्तियों का सागर सर्वशक्तिवान है ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो तो वो संबंध से सुख मिलता है संबंध से लाइट करंट आती है वो पावर हाउस है आत्मा बैटरी है शरीर को चलाने वाली वो पावर हाउस है उससे हमारी बैटरी कनेक्ट डिफॉल्ट ड्रामा संसार एक नाटक है इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं और हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है कोई किसी की पत्नी क्यों बनी कोई किसका पति क्यों बना उसी माँ बाप के पास क्यों जन्म लिया जो हमारे बच्चे वो हमारे बच्चे क्यों बने क्योंकि पिछले जन्म का लेन देन बाकी है तो हमारा अपने घर के संबंधियों के प्रति फर्ज है संबंध नहीं है पिछले जन्म का लेन देन पूरा करना है दुख दिया हुआ तो दुख लेना पड़ेगा वापस सुख दिया सुख लेना पड़ेगा इसलिए जो हुआ अभी तक वो परमात्मा इसका डायरेक्टर है वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है हम अब भगवान को बोले भगवान इसको मुझे बहुत दुख देता है इसको आप माफ इसको इसको समझा दो ना नहीं, भगवान कहेगा उसको दुख और दो जरा और ब्याज लगा के दो। अगर भगवान को आप याद करते हो तो भगवान आपको सहन शक्ति दे देता है, ताकि आपका कर्जा भी पूरा हो जाए और आप सहन भी कर लें, मतलब सूली कांटे जैसे बन जाए। इसलिए जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होने हो रहा है, और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो ये एबीसीडी को जितना आप रिवाइज करते हो मन मन में, जितना रियलाइज करते हो, तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है, उससे मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती है, उससे शांति आती जाती है, उससे रूहानी प्यार पैदा होता जाता है, उससे सुख की फीलिंग आती है, आनंद की फीलिंग, और शक्तियां आती जाती हैं, और आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, उसका मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल आता जाता है, पांचों कर्मेंद्रियां उसके वश में आ जाती हैं, आठों अंग उसके वश में आ जाते हैं। तो इस तरह से आत्मा का राज्य इस शरीर पर, कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार पर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप जीवन जिएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, सदा स्वस्थ और सदा खुश। ठीक है, ओम शांति।
खुशी